राम राम हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्त हो, भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत देवताओं की प्रार्थना भगवान विष्णु को वृत्रासुर से रक्षा के लिए, उसमें कल हमने पढ़ा के बहुत से तार्किक हैं, शास्त्रों के सार को नहीं जानते हैं और भगवान के विषय में, भगवान के ज्ञान के विषय में बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं। और फिर हमारे मनोज जी ने प्रश्न पूछा था कि साकार निराकार उपासना क्या है, तो साकार और निराकार एक ही भगवान है, दो भगवान नहीं है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान भी एक ही है, तीन नहीं है। परंतु उनको साधन के द्वारा समझने वाले जो है वो तीन प्रकार से उनको समझते हैं, वही साकार है वही निराकार है। अब प्रश्न मुख्य ये है कि इन तीनों में या दोनों में, साकार और निराकार में, कौन सा साधन श्रेष्ठ है। और ये 12वें अध्याय भगवद गीता का पहला श्लोक है। हम सब के लिए अर्जुन भगवान के मुख से निर्णय ले रहे हैं कि निर्विशेष निराकार और आपके साकार श्याम सुंदर में से किसकी श्रद्धा पूर्वक उपासना सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान ने कहा मेरे साकार श्याम सुंदर रूप की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। निराकार की उपासना में बहुत क्लेश है, तकलीफ है, कठिनाई है, और फिर जो लक्ष्य मिलता है वो भी ब्रह्म में लीन होने तक का मिलता है। भगवान के धाम में भगवान की सेवा का शुभ अवसर नहीं मिलता। तो ये तो निर्णय भगवद गीता में भगवान ने दे दिया कि साकार उपासना सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी ज्ञानी प्राय निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में ही अधिक विश्वास रखते हैं, और प्राय भारत में यही प्रचलन ज्यादा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य मुख्य रूप से भगवान की भक्ति के द्वारा और संकीर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल उत्तम जो साधन है वो हमको दिया गया है। अब एक प्रश्न रहता है कि पहले निराकार के पहले साकार, सो इसका उत्तर यह है कि साकार से निराकार की अनुभूति होती है, जबकि सामान्य लोग से आपको ज्ञानी ये कहते हैं निराकार साकार होता है, वो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि दोनों एक ही समय पे साकार और निराकार एक ही है, एक तरफ साकार है एक तरफ निराकार है, ऐसे समझो, तो दो तो है नहीं, तो किससे कौन आया ये भी ऐसे एक प्रश्न जो है कोई मुख्य नहीं है। फिर भी साकार का निराकार एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है। हम एक अपनी मोटी बुद्धि के उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं कि आप ऐसे आकाश में कोई एक फोटो बड़ा ले लो, उसको छोटा करके 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 कितना भी करो तो उसमें से कोई रूप नहीं बनेगा, आकार नहीं बनेगा। इसका मतलब निराकार से आकार बन जाए ये तो संभव है ही नहीं। आप कोई एक छोटा सा किसी आकार का फोटो ले लो, कोई भी फोटो ले लो, उसको बड़ा करते जाओ बड़ा करते जाओ बड़ा करते जाओ, तो एक ऐसी सीमा आएगी जब उस फोटो का नाम निशान नहीं रहेगा, सब निराकार हो जाएगा। तो साकार से निराकार हो जाए ये तो संभव है, निराकार साकार हो जाए ये तो हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता, ये कोई अनुभव पे समझ में नहीं आ सकता। और हमारा अपना शरीर है, हमारे पिता का शरीर, हमारे पिता के पिता का शरीर, और सबको पैदा करने वाले ब्रह्मा जी का शरीर, तो फिर भगवान को क्यों रूप नहीं होगा? ये मानना कि हमको रूप है और भगवान को रूप नहीं है, ये असल में भय के कारण है। हम समझते हैं भगवान का भी शरीर हमारे जैसा होगा, उनको भी हमारी तरह भूख लगती होगी, नींद आती होगी, दुखी होते होंगे, तो हमारे को ऐसा शरीर नहीं चाहिए जो एक दिन समाप्त होता है, क्योंकि भगवान के दिव्य शरीर के विषय में, सच्चिदानंद उनका विग्रह, इसके विषय में हमारे को अनुभव नहीं है। जानकारी हो भी सकती है लेकिन अनुभव नहीं है। तो आज देवता जो भगवान को नहीं जानते हैं उनका तो निषेध कर ही दिया, अब जो जानते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अथ वाव तव महिमामृत रस समुद्र विपुरुषा सकृद अवलीढ़या स्वमनसी निशन्यन्दमानान अवरत्त सुखेन विषमारित दृष्ट श्रुत विश्व सुखलेशाभास लेसा आभासाः परम भागवते कातिनो परम भागवत एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय स्वर्दे सर्वात्मनि नित्रं निरंतरं निरवृत मनस कथम उहा वाते मधु मथन पुनः स्वार्थ कुशलाय आत्म प्रिय सुहृद साधवस्तव चरणारंभुजान सेवाम विसर्जंती न यत्र पुनः अयम संसार प्रा पराय वरः। ये तो श्लोक नहीं है, सारा ही प्रोज में लंबा है, इसका हम केवल अनुवाद ही पढ़ रहे हैं। इसलिए हे मधुसूदन, हे मधु राक्षस का उद्धार करने वाले, हे मधु राक्षस का उधार करने वाले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हे मधु राक्षस का उद्धार करने वाले, जो निरंतर दिव्य आनंद आपके आपसे प्रकट होता है और भक्तों के मन में प्रवाहित होता है, और जिसने उस आनंद का थोड़ा रस ले लिया, एक बूंद का भी अनुभव कर लिया, आप तो आनंद के सागर है, परंतु एक बूंद का भी जिनको अनुभव हो गया, ऐसे महान भागवत पुरुष इस भौतिक जगत के तुच्छ सुख को जो एक प्रतिबिंब के समान है देखते ही नहीं है। वो सुख तो इंद्रियों से मिलता है, उसकी तो कोई चिंता नहीं, चिंतन नहीं, उसका विचार भी नहीं करते, उनका उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छा रहित है, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो सारे जगत के मित्र हैं, अपना स्वार्थ ही नहीं है। जब उस उनको अपना स्वार्थ नहीं है तो फिर वो किसी का अहित क्यों करेंगे, तो वो सबके हित का ही सोचते हैं, अपना मन। वो आपके चरण कमलों में लगा देते हैं और बहुत सुख और आनंद को प्राप्त करते हैं, और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सफलता से वो जीवन के परम लक्ष्य को सफल प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं। भगवान आप भी ऐसे भक्तों के लिए विशेष रूप से एकमात्र उनके हितेशी हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। और जिन्होंने आपका शरण लिया है वो फिर कैसे इस भौतिक जगत में फिर लौट के आएंगे, उनके यहां लौट के आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब इतना बड़ा लाभ आपके सानिध्य में प्राप्त होगा तो फिर वो क्यों इस संसार में फिर आपकी भक्ति को छोड़ के और कोई प्रयास करने का इच्छा करेंगे? ऐसे तो हो नहीं सकता। चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, जो उत्तम भागवत है, जिसने संसार के भौतिक सुख को त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया संसार के भौतिक सुख को? क्योंकि उनको आपके प्रेम भक्ति जो निरंतर उनके मन में अनुभूति में आ रही है, वो आपके आनंद के सागर की एक बूंद के समान भले ही क्यों ना हो, परंतु उसका आनंद इतना है, वो जानते हैं, उनको ये विश्वास है, वो आपकी महिमा को, आपकी मधुरता को जानते हैं, उनको विश्वास है कि आप एकमात्र हैं, एकांत हैं और कोई नहीं है, और सबके हितेशी हैं, सबके हृदय में विराजमान है और सबका कल्याण करने के लिए हैं। ऐसे भक्त जो निरंतर अपने मन में आपके चरण कमलों का आनंद ले रहे हैं और जो सबके हित का सोच रहे हैं, वो आपके चरणों की सेवा कैसे छोड़ सकते हैं? और ऐसे चरणों की सेवा जिसको प्राप्त करने से जन्म मृत्यु से तो निरंतर मुक्ति ही मिलती है, तो फिर वो ये सेवा कैसे छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये इसका भाव है। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं, पहले निंदा उनकी कई की गई जो अभक्त है और जो भगवान को समझने में समर्थ नहीं है, उनकी की गई निंदा। अब उनकी प्रशंसा और महिमा गाई जा रही है जो भक्त हैं। तो भक्तों की महिमा में मुख्य बात क्या की जा रही है? उन्होंने भौतिक सुख को भुला दिया है। क्यों भुला दिया है? क्योंकि आपके चरण कमलों का जो अमृत है और जिसके आप सागर हैं, उसको वो निरंतर चख रहे हैं और वो आपकी पूर्ण सेवा में लगे हुए हैं, और किसी देवता की भी सेवा में उनको कोई रुचि नहीं है। एकांतिनः का मतलब है एक आपकी सेवा करते हैं और किसी की सेवा नहीं करते हैं। जो देवता है, बड़े बड़े ऋषि हैं, वो ऐसे भक्तों से बड़े प्रसन्न होते हैं, देखते हैं कि ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाती है, क्योंकि भगवान सभी की आत्मा है, सभी के हितेशी है, सभी के सौहृद है। अगर भगवान की सेवा हो गई तो जगत की सेवा हो गई, तो देवता भी प्रसन्न होते हैं जो भगवान के भक्त हैं उनसे, ऋषि भी प्रसन्न होते हैं जो भगवान के भक्त हैं उनसे। और लिखें, जो भगवान की सेवा को त्याग दे वो झूठा जोगी है और वो अपना भी हित नहीं कर सकते, तो दूसरे का भलाई क्या करेंगे? परंतु भक्त सबकी भलाई करता है। स्वार्थ कुशलाहा, स्वार्थ कुशलाहा, अपना तो भला करते हैं परंतु सबका भला करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब भक्त जो है उनके पास बहुत कम ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान के कारण और तर्क वितरक और मन कपोल और मन के विचार के कारण वो भगवान के स्वभाव को और स्वरूप को नहीं जान सकते। परंतु जो भक्त है, जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों के अमृत का रस आस्वादन कर लिया, चख लिया, वो भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। और हमारे कृष्ण भावना में प्रायः भक्तों को जो सबसे अधिक भगवत प्रेम की अनुभूति होती है, वो होती है नाम संकीर्तन में। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में कभी ऐसी एक वैसे नहीं रोज आती है, किसी को जीवन में एक बार, कई सालों में एक बार ऐसा अद्भुत आनंद का अनुभव होता है कि उसके समान आनंद की तुलना संसार में किसी सुख से नहीं की जा सकती। इसलिए भक्त उसी आनंद को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में आजीवन लगे रहते हैं। और भगवान भी बहुत छलिया है, वो नए नए भक्तों को थोड़ी देर के लिए अपने कीर्तन में और अपने प्रसाद में और अपने सुंदर मंदिर के दर्शन में और भक्तों के संग में कभी कथा के अंदर और कभी भगवान के धाम वृंदावन आदि में किसी कोने में किसी लीला के अंतर्गत कोई ऐसी अनुभूति एक करा देता है कि उस भक्त को उसकी तुलना में संसार में कुछ नहीं दिखता है और उसी को पुनः प्राप्त करने के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहता है। ऐसे भगवान ने नारद जी को, छोटे बालक नारद को, संतों के संग का प्रभाव और संसार के सुख से वैराग हो गया, माता के मृत्यु के बाद भगवान ने अनुभूति अपनी कराई परंतु फिर नहीं हुई। और उसी अनुभूति को ढूंढते ढूंढते नारद भगवान की वाणी सुन ली के अभी नहीं होगी दोबारा, अभी तुम इसी साधन को पक्का कर लो और शरीर छूटने के बाद तुम्हारे को वास्तविक असली मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। तो ये यहाँ जो लिखा जा रहा है कि ये सत्य है, सब जीवों के, सब भक्तों के जीवन में इसका अनुभव है। अगर नहीं होता, ऐसा थोड़ा सुख नहीं मिला होता, किसी प्रकार से मिला हो, चाहे भक्तों की सेवा से मिला हो, संग से मिला हो, कीर्तन से मिला हो, लेकिन मिला जरूर होगा। और ये सुख मिला है इसलिए हम भक्ति में अभी तक लगे हुए हैं। भक्त ये जानता है कि केवल भगवान की सेवा करने से सभी संतुष्ट हो जाएंगे, इसलिए भक्त सबका हितेशी है, सुहृद है, मित्र है, सब जीवों का कल्याण करना चाहता है। और इसलिए शुद्ध भक्त सदा ही भगवान का गुण लीला के कीर्तन का प्रचार विश्व भर में करना चाहता है। और इस प्रचार से कई बिचारे बद्ध जीव जो अज्ञानी हैं परंतु श्रद्धालु हैं, वो भगवान का शरण लेके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो इस श्लोक से भाव ये मिल रहा है कि भगवान के भक्तों को अपने जीवन में जन्म को थोड़ा सार्थक करके परोपकार करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ले भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जन्म सार्थक होता है भगवान के चरण कमलों के अमृत के रस आस्वादन से। और श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ये पांच चीजें, जैसे भगवान के वृंदावन धाम में आना, भागवत का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, नाम का कीर्तन करना और भगवान के सुंदर अर्च विग्रह स्वरूप का श्रद्धापूर्वक सेवन करने से, कोई बिल्कुल नया भक्त हो उसको भी भाव का झलक दिखाई दे देता है, भाव भक्ति का उदय तत्काल हो जाता है, अचानक थोड़ी देर के लिए हो जाता है। और इसको आप भूल नहीं सकते, ये इतने शक्तिशाली साधन है। तत्काल भगवान के भाव को प्रकट करने में ये पांचों समर्थ है, परंतु ये सबके लिए नहीं है। ये सत्य है लेकिन सबके लिए नहीं है, जो जब तैयार होगा तब उसको उसकी अनुभूति होगी। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं 40वां। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविकर्म त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव त्वएव विभूतयो हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा प्रभु जी।
तव एव विभूतयो द्वितीयतनुजादयश्चापि तेषां उपकर्म समयो अयमिति स्वात्ममायसुरनर मृग मिश्रित मिश्रितः जलचराकृतिभिः यथा प्रधा पराधम दंडम दंडधर दधरथ एव एनमपि भगवन् जहि त्वा सृष्टमुत यदि मन्यसे। अब भगवान की प्रार्थना में कहते हैं त्रिभुवन आत्मा, तीनों लोकों का आप आत्मा है, तीनों लोक का आप स्वरूप है। भवन तीनों लोकों का आप भगवान आधार है, तीनों लोकों का आप आत्मा है। त्रिविकर्म और तीन चरणों में आपने तीनों लोकों को दो चरणों में नाप लिया, तीसरे चरण के लिए तो जगह ही नहीं बची आपके वामन देव में। त्रैनेन शब्दार्थ में तो प्रभुपाद ने त्रैनयन के लिए लिखा है तीनों लोकों के पालक, और नीचे अनुवाद में लिखा है नरसिंह देव का रूप। त्रैनयन त्रिलोक मनोहर, तीन लोकों में आप ही मनोरव अनुभव है। और दैत्य और दानव आपकी विभूति है, परंतु आप जब चाहें अपनी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा संसार में मानव के रूप में, रामकृष्ण के रूप में, मृग के रूप में, वाराहदेव के रूप में, मिश्रित रूप में, नरसिंहदेव के रूप में, जलचर कच्छप और मत्स्य के रूप में अवतार लेते हैं और हम देवताओं का रक्षण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और इन अपराधियों को दंड देते हैं। तो भगवान आज भी हमारी समस्या है कि तुष्टा का पुत्र ये वृत्रासुर हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बना हुआ है, आप पुनः प्रकट होइए और हमारी रक्षा कीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं हे तीनों रूपों के स्वरूप, तीनों रूपों की आत्मा, तीनों लोकों के स्वामी पिता, तीनों लोकों के आश्रय और शक्ति वामन देव के रूप में आपने तीन चरणों में सबको नाप लिया और नरसिंह देव के रूप में तीन आपके तीन आंखों वाला रूप लिखा है। तीनों मनोहर, तीनों लोकों में आप मनोहर है, सब मन को हरने वाले हैं। इस संसार में जो कोई है, मानव है या हम देवता है, या दैत्य के पुत्र है या दानों के पुत्र है या जो राक्षस है, वो भी आपकी ही शक्ति का विस्तार है। वो सब वही जीव शक्ति आपकी शक्ति है, वो आपका ही विभूति है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप सदा नाना अवतार लेते हैं और असुरों को दंडित करते हैं, जैसे ही उनका शक्ति बढ़ जाता है और वो अत्याचार करते हैं तो आप उनका संहार करते हैं। आप कभी वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं, कभी रामचंद्र और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, कभी तो आप वाराह देव के रूप में प्रकट होते हैं पशुओं के अंतर्गत, और कभी कभी नरसिंह देव के रूप में, नरारी केसरी के रूप में प्रकट होते हैं, और हयग्रीवा गर्दन घोड़े जैसा होता है, वेदों की रक्षा करते हैं, और कभी तो जलचर में मच्छप और कच्छप अवतार में प्रकट होते हैं। ये सब रूप आप धारण करते हैं दानव और असुरों को दंडित करने के लिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं, ये हमारे आराध्य देव एक और अवतार ले लीजिए, और अगर आप चाहें, ये अगर आपकी इच्छा हो, तो ये बड़े असुर वीरतासुर का उद्धावध कीजिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, तीनों लोक आपका निवास स्थान है हे त्रिवीर कर्म, तीनों लोकों के स्वामी और तीनों लोकों में मनोहर अनुभूति का स्वरूप, भले देवता आपकी ही विभूति है, आपका ही शक्ति है, परंतु ये समय नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए। उनके कार्य अब बहुत संसार के संतुलन के लिए भारी हो गए हैं। जैसे आप सदा ही दंड देते हैं असुरों को, कोई ना कोई अवतार लेकर, कभी देवताओं में, कभी मानव में, कभी पशु में, कभी जलचर में, ऐसे कृपा करके आप प्रकट होइए, और तुष्टा के पुत्र को जो दंड के इस वक्त दंडनीय है, उसको आप दंड दीजिए। देवता कहते हैं, आपके भक्त तो महान है, जिनका हमने वर्णन पहले किया, जो तो आपके चरण कमलों का अमृत पी के मद मस्त है, उनको भौतिक कोई इच्छा और सुख की तमन्ना ही नहीं है, परंतु हम नीचे स्तर के भक्त हैं। देवता कहते हैं, हम अवर हैं, हम वरिष्ठ नहीं है, हम उत्तम नहीं है, हम थोड़े नीचे है, क्योंकि हमको भौतिक इच्छाएं, हम सकाम भक्त है, और ऐसे कह के कहते हैं, हम आपको एक प्रार्थना कर रहे हैं। ये तीनों जगत, ये तीनों लोक आपका निवास स्थान है, और हम देवता आपके भक्त हैं, हैं सकाम भक्त लेकिन हैं आपके भक्त, और ये मानव भी आपके भक्त हैं, और विशेष रूप से धरती के ऊपर मानव तो भाग्यशाली भक्त आपकी प्रेम से सेवा करते हैं, परंतु इस वक्त जो ये आपका तीन लोकों का निवास है, इसको असुरों ने इसके ऊपर अत्याचार कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। आप त्रिनयन हैं, त्रिनयन का अर्थ है आप तीनों लोकों को अपने बस में रखते हैं। कैसे कर रखते हैं बस में? बोले तीन अपने चरणों से त्रिवर्कम के रूप में तीनों को अपने बस में रख लेते हैं। आपका चरण उठाना और एक लोक आपके चरण में अपने आप नतमस्तक हो जाता है, आप उसके स्वामी हैं। वामन देव के रूप में आपने तो तीसरे कदम में बलिदेव के सर को ही नाप लिया, और बलिदेव बलि महाराज से वो लेकर हमको आपने दे दिया था, स्वर्ग हमको वापस दे दिया था। आप इस असुर वीरतासुर का वध कीजिए, और तीनों लोक आपके मनोहर अनुभव को देख के सुखी हो जाएं। भगवान कहते हैं, आप मेरी पूजा करते हो कि मैं दूसरे की हत्या करूं, हिंसा करूं, इसके लिए पूजा करते हो? आप मेरी प्रार्थना करके कह रहे हो कि तुष्टा के बेटे को मार दो, तो क्या आप मेरी पूजा दूसरे के हत्या कराने के लिए कर रहे हो? तो देवता कहते हैं, नहीं नहीं, वो आपके ही अंश हैं भाई। देवता असुर को किसने पैदा किया? भगवान ने किया। अगर हम ममई वंश हो, हम जीव भगवान के अंश है, तो असुर भी तो भगवान का ही अंश है, कहीं और से तो आत्मा आया नहीं है उसका। तो वो कहते हैं, वो सत्य है कि वो आपके अंश हैं, परंतु इस समय उनके कार्य दंडनीय है, इस समय उनके कार्य जो है ये वो समय नहीं है, इस वक्त उनको दंड देना चाहिए, इसलिए हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं। हे दंडनीय भगवान, असुरों का संहार करने वाले, जैसे पहले आपने समय समय के ऊपर धर्म की रक्षा के लिए असुरों का संहार किया है और भक्तों का संरक्षण किया है, अभी आपको हम पुनः प्रार्थना करते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक सकाम और एक अकाम। जो अकाम भक्त होते हैं वो शुद्ध भक्त होते हैं, और जो और ये शुद्ध जो भक्त होते हैं वो तीनों लोकों में कुछ नहीं भगवान से चाहते, परंतु जो स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता हैं वो सकाम भक्त हैं, उनकी अभी भी भौतिक भोग की इच्छा है, ऐश्वर्य चाहिए, भोग और ऐश्वर्य चाहिए, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उनकी अभी आसक्ति भोग और ऐश्वर्य में है। और उन्होंने पुण्य किए हैं इसलिए उनको स्वर्ग मिला है और उसमें वो सुख भोग रहे हैं, और अपने हृदय में अभी भी भौतिक भोग भोगने की उनकी इच्छा है और सामित्व का भाव है कि हम इस लोक के स्वामी हैं। सकाम भक्त जब कभी असुर या उनके ऊपर कोई राक्षस आक्रमण करता है तो वो भगवान को जाके प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करो, ये सकाम भक्त का भाव है। और भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान के अवतार सर्वशक्तिमान है, वामन देव का अवतार हुआ तो सारी पृथ्वी को दो चरणों में नाप कर और बलि महाराज से लेकर और वापस देवताओं को दे दी, और भगवान का नाम ही त्रिवीर कर्म हो गया, त्रिविक्रमा। विक्रम का मतलब बहुत बड़ा भारी कार्य, केवल दो पग में तीन पग में ही पूरा कर लिया सब कुछ, सारे तीनों लोगों को तीन कदम में नाप लिया। और प्रभुपाद कहते हैं सकाम और अकाम भक्त में अंतर यह होता है, सकाम भक्त जो देवता हैं वो जब दुख में होते हैं तो भगवान का शरण लेते हैं और दुख का निवारण चाहते हैं, परंतु अकाम जो भक्त होते हैं, शुद्ध जो भक्त होते हैं, जिसकी कोई कामना नहीं होती है, वो किसी मुश्किल से मुश्किल कठिन परिस्थिति में हो, महाभयानक भय में हो, भगवान को विचलित नहीं करते, परेशान नहीं करते अपने भौतिक सुख के लिए, भगवान के आनंद में विघ्न नहीं डालते हैं अपने संसारिक शारीरिक अथवा भौतिक किसी कष्ट के लिए। भले कभी कभी ऐसे अकाम भक्त दुख में दुखी देखे जाते हैं, परंतु वो कहते हैं ये दुख हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का है, अगर आ गया है तो हमको भोग लेना चाहिए, भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। परंतु सकाम भक्त अगर होगा तो तत्काल एकदम भगवान को प्रार्थना करेगा, भगवान हमारे को इस दुख से निकालो। परंतु उनको भी सुकृतिन कहा गया है, भले मानस कहा गया है, क्योंकि अपने आप को भगवान के आश्रित मानते हैं कि हम भगवान के शरण में हैं, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हैं। और प्रभुपाद जी असल में ये तो है अकाम भक्तों के लिए श्लोक, उनकी क्या विचारधारा होती है, ते तत्ते अनुकंपां सुसुमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृतवागव पुभेर विधं विदधं नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाक। तत्ते अनुकंपां, तत्ते अनुकंपां, भले वो दुख भोगते हो, आशा बनाए रखते हैं कि भगवान अनुकंपा करेंगे, कृपा करेंगे, सुसमीक्ष मानो और प्रतीक्षा करते रहेंगे, सुसमीक्ष मानो देखते रहेंगे भगवान की ओर, कृपा भगवान की जरूर आएगी। और जब तक ऐसे आशा बना के रखेंगे, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने कर्मों से फल के रूप में कोई संकट आया है उसको भोगते रहेंगे। भुंजान एवात्म, मेरे ही अपने कर्मों के कारण आया है। कृतम विपाकम, मेरे ही कर्म पक्के हैं इसलिए कोई फल आया है, प्रारब्ध है, चलो इसको भोग लेते। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में तो लिखा है कि जैसे ही कोई साधन भक्ति करता है सारे पाप तो नष्ट, प्रारब्ध नाश हो जाता है, अप्रारब्ध नाश हो जाता है, तो ये कौन से दुख भोग रहा है। तो वहां लिखा है कि भक्ति के अंतर्गत अपराधों से होने वाले भी कष्ट कभी आते हैं, उनको भी धीरज से भोगता है। भगवान की कृपा की आशा बनी रहती है कि भगवान निश्चित कृपा करेंगे। और क्या करता है दुख भोगते समय, हृदय वाक वभुवीर विदधम नमस्ते, अपने हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को नमस्कार करता है और सेवा में लगा रहता है। संकट आया है मेरे कर्मों का, भगवान की सेवा मेरा भक्ति का धर्म स्वधर्म है, इसको तो मैं करता रहूंगा, भगवान जरूर कृपा करेंगे। जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाक, इस दाय भाग का अर्थ है बेटा अगर जिंदा रहे तो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने आप बन जाता है, कुछ प्रयास नहीं करना। ऐसे ये अगर भक्ति में लगा रहेगा, दुख भोगते हुए आशा बनी रहेगी, तो निश्चित रूप से मुक्ति पदे, जो संसार को मुक्ति देने वाले हैं उनके चरणों को प्राप्त करने में ऐसे अधिकारी बन जाएगा जैसे जीता बेटा पिता के संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। ये ब्रह्मा जी का श्लोक है, इसको प्रभुपाद जी कई बार उद्धृत करते हैं। भक्तों को दो ही बातें इसमें हैं, दुख आए तो भगवान की सेवा में लगे रहो, भक्ति में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, बार बार आशा बनी रहे कि हमारी भक्ति न विचलित हो, दुख आया है चला जाएगा, भक्ति हमारी बनी रहे तो निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे। और भगवान के मुक्ति पदे का मतलब है जो मुक्ति देने वाला है उसके चरणों की प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त नहीं, मुक्ति देने वाले के चरणों की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। अब प्रभुपाद लिखते हैं, दुख में तो भक्त अति उत्साह के साथ प्रार्थना करते हैं और दृढ़ता से भक्ति में लगे रहते हैं, वो तो भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सकाम भक्त भी भगवान से अपने इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है, परंतु भगवत धाम जाने के लिए अभी वो तैयार नहीं है। भगवत धाम नहीं जा सकते जल्दी, परंतु भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते। यहां ये ध्यान पूर्वक समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु बहुत सारे अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री मध्वा आचार्य ने लिखा है, विविधम भाव पात्रत्वात् सर्वे विष्णुः विभूतयः। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सारे विष्णु अवतार उसी श्री कृष्ण का विस्तार है। एक और श्लोक पढ़ते हैं, अस्माकं तावकानां ततत् ततत्तनतानां हरे तव चरण नलीन युगल ध्यान अनुबद्ध, तव चरण नलीन युगल ध्यान अनुबंध हृदय निगाड़ना। एक शब्द है इतना बड़ा, स्वलिंग विवरणे नात्मस आत्मसात कृतानाम अनुकंपानुरंजिता विशद रुचिर शिशर शिशिर स्मित्वालोकेन विगलित मधुर मुख रसामृत कलया चांत तापम अनघारहसी संयुतम अस्काम अस्माकम हम देवता त्वका नाम भगवान आपके ऊपर निर्भर है, हमारा आप ही एकमात्र आश्रय है। ततत्त नतानाम तत्त हमारे पिता के भी आप पिता हो, मतलब पिता मह हो, हमारा ब्रह्मा पिता आप ब्रह्मा जी के पिता हो। ततत्त नतानाम हम नतमस्तक है, आपके चरणों में शरणागत है। हे हरि, भगवान को कहते हैं हरे, हे हरे, हे हरि, आपके चरण कमल युग नलीन युगल, दो सांवले चरण कमल, श्याम चरण श्याम कमल जैसे चरण, ध्यान अनुबद्ध जिसका ध्यान किया जाए, कहां हृदय निग्रा नाम, हृदय में धारावाहिक जिसका ध्यान किया जाए। स्वलिंग विवरणे ना आप अपना रूप प्रकट कीजिए भगवान। आत्मसात कृतां जिन्होंने आपको अपना स्वामी मान लिया है उनके हित के लिए आप एक रूप प्रकट कीजिए। अनुकंपा बड़ी दया कीजिए, अनुकंपा कीजिए। अनुरंजित बहुत अनुरंजित सुख दीजिए। विशद रुचिर शिशिर सुमित अवलोक्य, ये भगवान की बहुत शीतल मंद मुस्कुराहट का वर्णन है, जो रुचिर है बहुत आनंददायी है, और शिशिर है बहुत शीतल है, और स्मित है मुस्कान है, अवलोक्य है दृष्टि है। आप शीतल मंद मुस्कान वाली मधुर दृष्टि हमारे ऊपर डालिए। मधुर मुख रस और विगलित, विगलित गलित कहते हैं गिल हृदय पिघल जाए, आपकी दया हृदय पिघल दे। मधुर मुख रस और आपके मुख से जो अमृत का रस चू रहा है, अमृत कलया उस अमृत के कुछ बूंदे, अंत हमारे अंतःकरण में तापम जो बहुत ताप है, दुख है, जो पीड़ा है, अनग्रह ओ परम पवित्र भगवान, अहरसी संयम कृपा करके उसको संयुतम समाप्त कर दो, हृदय के दुख को समाप्त कर दो। हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम शुद्ध अनंग, हे नाथ, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके चरणों कम, हमने आपके चरणों कमलों का शरण ले लिया है। वास्तव में सच तो ये है कि हमारे मन आपके चरण कमलों के ध्यान में धारावाहिक लगे हुए हैं, प्रेम पूर्वक लगे हुए हैं। आप अब कृपा करके अपने अवतार को प्रकट कीजिए, हमको अपने सेवक और भक्त मान लीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए, हमारे प्रति अनुकंपा कीजिए, दया कीजिए। कैसे करूं भगवान कहते हैं दवा, बोला प्रेममयी मधुर मुस्कान वाली दृष्टि डाल दीजिए जो बहुत शीतल है, और जो मुख से मधुर वचन अमृतमय निकलेंगे, आप कहिए कुछ कि आप हमारा हित करेंगे। और ये वचन आपके हमारे हृदय में जो पीड़ा है, जो वृत्रासुर ने हमको सताया है, उसका निवारण हो जाएगा। हे हमारे पिता के भी पिता, हे पितामह, हे परम पुरुष भगवान, हमारे हृदय में जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको एक बूंद आपके मधुर अमृत की, जो आपके मुख से वाणी के द्वारा प्रवाहित होगा, वो अनुकंपा करके मुस्कुराते हुए सुंदर मुख से एक दृष्टि डाल दीजिए, क्योंकि हम आपके हैं, हमने आपका शरण लिया हुआ है, और आप प्रकट हो जाइए, और हमारा हृदय धारावाहिक आपका ध्यान कर रहा है, आपके चरण कमलों का ध्यान कर रहा है, हम आपके हैं, हम आपका शरणागत हैं, कृपा कीजिए, हमारे दुख का निवारण कीजिए। भगवान की प्रशंसा कर ली, अब भगवान से मधुर वाणी में और सुंदर दर्शन भगवान का, और कटाक्ष मधुर मुस्कान वाला शीतल उसकी, उसके प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे पितामह, धारावाहिक हम अपने हृदय में आपके चरण कमलों का ध्यान कर रहे, हमारी मधुमक्खी की तरह मन आपके चरण कमलों के मधुर रस को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता, परंतु हमारे हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है। आप स्वलिंग विवरण आप प्रकट होइए, और अपने मुख से अमृत की बूंद से, हमारे बूंद से मतलब मधुर वचनों से हमारी पीड़ा को शांत कीजिए। प्रभुपाद जी के ब्रह्मा जी को देवताओं का पिता माना जाता है, और भगवान कृष्ण या विष्णु ब्रह्मा के भी पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने कमल से जन्म लिया जो विष्णु की नाभि से निकला, तो उसको ब्रह्मा जी का बेटा कहा, ब्रह्मा जी को भगवान का बेटा कहा जाता है, और देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं। बस प्रभुपाद का इतना ही तात्पर्य है। अब आगे का श्लोक कल पढ़ेंगे, लंबे श्लोक हैं बहुत। अथ भगवन् सतवास्माभि अखिल जगत् उत्पत्ति स्थिति लय निमित्तायमान दिव्यः दिव्य माया विनोदस्य सकल जीव निकायमानं अन्तरहृदेषु बहि अपि च ब्रह्म प्रत्यग आत्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देहावस्थान विशेषम तदा उपादान उपलम्भ कत्यनानुभव अनुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिणा आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियान इह वारथ विशेषो विज्ञापनीह स्यात् विषफुलिंगादिभिव हिरण्यरेतसः। बहुत लंबा श्लोक है। हरे कृष्ण। हिरण्यरेतसः, हिरण्यरेतसः अग्नि से निकलने वाली चिंगारी। हम तो चिंगारी के समान है, अपूर्ण अग्नि है। इस जगत का सृष्टि आदि सब आप करते हैं, ये इसमें कहा गया है। इसका ये श्लोक है हमारा 42 से आगे कल बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु।
हाँ जी। एक आप कुछ बताने लगे थे इसका, ये प्रभुपाद जी ने जो ये त्रिनयन है उसको भगवान नरसिम्हदेव लिखा है।
कैसे लिखा है मालूम नहीं, क्या लिखा है त्रिनयन का, वैसे अर्थ लिखा है तीनों जगत तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में रखने वाले, शब्द अर्थ में लिखा है तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में रखने वाले। चक्रवर्ती बाद ने भी नयन को नियंत्रण का लिखा है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने नरसिंह देव त्रिनयन लिखा है। तीसरा नयन नरसिंह देव का हमारे ध्यान में आता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने नीचे क्योंकि वो मिश्रित अवतार है वो है नरसिंह देव का, लेकिन त्रिनयन में नरसिंह देव को लिखा है। वो क्या भाव से लिखा है तो वो हमारे को ऐसे अनुभूति में नहीं आ रहा है।
अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे भगवान ने इस श्लोक के जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी सवाल एक डालते हैं भगवान की तरफ से कि आप मेरी पूजा क्यों कर रहे हो किसी को मरवाने के लिए, तो क्या इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं भगवान को तो मालूम है वृत्रासुर के बारे में?
उन्हें भगवान को तो सब मालूम है कौन क्या है। ये अब श्लोक जो आ रहा है इसमें ये लिखा है कि भगवान हम आपको कहें कि आपको सब पहले से मालूम है, वो आ रहा है। परंतु मानो भगवान कहें कि आप पूजा करके आप दूसरे को मरवाना चाहे, तो कहते हैं इस समय उनके कार्य ऐसे हैं कि उनको दंड देना ही चाहिए क्योंकि वो अत्याचार कर रहे हैं।
तो ये अपनी जो देवता प्रार्थना कर रहे हैं इसमें जो अभी हमने कल भी पढ़ी और आज भी सुनी कि ज्यादातर कंपैरिजन डिवोटीज और नॉन डिवोटीज का दिया जा रहा है।
नॉन डिवोटीज एक ही श्लोक में था, दो श्लोक जो कल के थे उनमें था, जो तार्किक हैं, जो कुतार्किक हैं, जो शास्त्रों के सार को नहीं जानते हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते उनको छोड़ दो। अब जो है दो प्रकार के भक्तों का वर्णन हो रहा है, सकाम और अकाम। तो देवता सकाम भक्तों में आते हैं और शुद्ध भक्त अकाम भक्तों में आते हैं, तो अब इनकी तुलना हो रही है। और सकाम भक्तों को भी भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनको भी उदार कहते हैं, परंतु वो भगवत धाम जाने के अभी अधिकारी नहीं है। उनको भगवान या भगवान के भक्तों की कृपा और संग की और सहयोग की आवश्यकता है, तब वो आगे बढ़ सकेंगे।
जी जी बिल्कुल।
ये देवता भगवान के भक्त है लेकिन सकाम भक्त है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न जिज्ञासा?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा मनोज जी।
प्रभु जी जो आपने कल बताया था ना उसका आंसर जो आज में दिया आपने अभी, उसमें आपने वो रस्सी वाला उसी को जो दिया था कि रस्सी तो रस्सी है लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो हमारे ज्ञान का अभाव है ना, तो हमारा ज्ञान का अभाव हमें गलत रास्ता लाता है या गलत भक्ति सिखाता है।
एक सीधी बात यह है कि रस्सी को सांप समझो या पानी की लकीर समझो, परंतु पहले एक बात माननी है कि वहां कोई चीज है, कोई चीज है, इसका मतलब झूठ नहीं है। ये जो एक कहावत है कि जगत झूठा है, वो इस उदाहरण से खंडन होता है, क्योंकि चाहे रस्सी समझो, चाहे सांप समझो, चाहे पानी की लकीर समझो, पर कोई चीज तो है वहां। जो चीज है उसका अस्तित्व तो है, पहली बात तो ये है। फिर उसको अंधेरे के कारण रस्सी को मैंने सांप मान लिया, यह है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण हमने रस्सी को रस्सी न समझकर सांप मान लिया और हमको भय होने लगा। और जैसे प्रकाश हो जाए, रोशनी हो जाए, तो पता लगेगा ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, तो भय खत्म हो गया। तो इसका अर्थ है कि अज्ञान के कारण भय होता है, और जब भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए तो फिर भय समाप्त हो जाता है। भय किससे हुआ था? रस्सी से हुआ था। क्या समझ के हुआ था? सांप समझ के हुआ था, ये था अज्ञान के कारण। परंतु रस्सी का अस्तित्व है, वो झूठ नहीं है, इसलिए जगत मिथ्या कहना ठीक नहीं है।
तो प्रभु जी, ज्ञानी ज्ञानी लोगों की भक्ति में और अज्ञानी लोगों की भक्ति में क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या है?
ज्ञानी लोग भगवान को पहले तो साकार मानते ही नहीं है, केवल ब्रह्म और निराकार मानते हैं। वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, परंतु वो शास्त्र उपनिषदों को पढ़ के ज्ञान से अज्ञान का नाश करने का प्रयास करते हैं, और उनका लक्ष्य होता है संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और हमको ब्रह्म में लीन होना है। ये है ज्ञानियों की परिभाषा। और भक्त कहते हैं जगत सच्चा है, झूठा नहीं है, क्योंकि सच्चे भगवान का ही विस्तार है, परंतु जगत सदा रहने वाला नहीं है, अस्थाई है। जगत क्योंकि भगवान का है, इस जगत को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जिस ब्रह्म को ज्ञानी मानते हैं, वो तो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, जैसे सूर्य की रोशनी है, तो वो भी भगवान ही है, परंतु फिर भी भगवान के भक्त उस प्रकाश से आगे भगवान के साकार रूप की सेवा में प्रेम पूर्वक लगना चाहते।
तो दोनों ही अपनी जगह सही है, फिर
दोनों ही
अपनी जगह सही है।
अपनी जगह दोनों सही है, एक अधूरा है, एक पूरा है। जो भगवान की सेवा करना चाहता है वो पूर्ण है, जो केवल ब्रह्म तक पहुंचना जाता है वो अधूरा है।
तो जैसे ये आज कहते हैं ना कि भगवान,
ये आज पढ़ा रहे थे सातवें अध्याय में, वहां भगवत गीता में लिखा है कि समग्रम का मतलब पूर्ण। तो भगवत अनुभव पूर्ण है, ब्रह्म और परमात्मा अनुभव अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, परंतु है भगवान का ही अनुभव, पहला स्तर है, ऐसे समझ लो। ब्रह्म का अनुभव पहला स्तर है, परमात्मा का अनुभव दूसरा स्तर है, और भगवान का अनुभव पूर्ण अनुभव है। और जो भगवान को जान लेता है वो ब्रह्म और परमात्मा को बिना प्रयास के अपने आप जान लेता है, उसके लिए अलग कोई साधन की जरूरत नहीं है। जो भगवान को जान जाएगा वो परमात्मा को और ब्रह्म को अपने आप जान जाएगा। जैसे आपके पास 2000 रुपये का नोट है, तो उसमें 500, 100, 50 के नोट तो अपने आप आ जाएंगे, उसके लिए अलग कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। तो भगवत साक्षात्कार भक्त का लक्ष्य होता है। भक्त भगवत साक्षात्कार करना चाहता है, ज्ञानी आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है। तो दोनों में अंतर ये है, एक आत्मा का साक्षात्कार करना है ये ज्ञानी है, एक परमात्मा का साक्षात्कार करता है ये योगी है, और एक भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है वो भक्त है। कभी भी ज्ञानी और योगी के भगवान सारथी नहीं बनते। अर्जुन के जैसे कृष्ण सारथी बनते हैं, ऐसे किसी ज्ञानी और योगी के नहीं बनते। भगवान आदान प्रदान जो है प्रेम का, केवल भक्तों के साथ करते हैं। ब्रह्म प्रकाश है, उसके साथ आप प्रेम कैसे करोगे, उसकी सेवा कैसे करोगे, वो आपसे आदान प्रदान कैसे करेगा, आपके सुख दुख में वो कैसे आपकी सहायता करेगा? नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो तो निरपेक्ष है, वो तो निर्विशेष है। भगवान ही केवल आपके साथ भक्ति, आपकी भक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भक्ति भगवान को प्रेम पूर्वक अपने वश में कर सकती है, जबकि न ज्ञान और योग भगवान को वश में नहीं कर सकते।
तो फिर भक्ति ही श्रेष्ठ हुई।
भक्ति तो श्रेष्ठ है ही, और भी साधन उनमें थोड़ी भक्ति नहीं होगी तो वो कोई फल नहीं अपने आप में दे सकते। न ज्ञान स्वतंत्र कोई फल दे सकता है बिना भक्ति के, न योग स्वतंत्र फल दे सकता है बिना भक्ति के। उनको भक्ति के सहारे की जरूरत है, परंतु भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसको न ज्ञान की न कर्म की न योग की आवश्यकता है। उनका फल भक्ति को बिना प्रयास के अपने आप मिल जाता है।
जी प्रभु जी,
इसलिए प्रेम पूर्वक भक्ति करना चाहिए, जो श्रेष्ठ है और आसान भी है, परंतु नियमों से करने में कुछ प्रयत्न की आवश्यकता जरूर है, कि नियम पालन करने होते हैं कठोर। हरे कृष्णा, धन्यवाद
जी।
हरे कृष्णा जी।
प्रभु जी, जब यहाँ पढ़ते हैं ना हम लोग नरसिंह भगवान का जो क्वच भी है, नरसिम्हा क्वच, उसमें भी ये आता है त्रिनयनम वाला, तो प्रभु जी कुछ बताएं अगर आपको
हो सकता है। त्रिनयनम का मतलब है कि एक क्रोध की आंख है उनकी, कोई क्रोध का रूप तो है, तो हो सकता है।
ऐसे आता है विवृतासम त्रिनयनम,
अतः इसलिए प्रभुपाद के मन में वो शब्द आया होगा, इसलिए लिख दिया है त्रिनयनम को नरसिंह देव।
पढ़ते थे समझ नहीं आती थी, पर त्रिनयनम पढ़ा है प्रभु जी। हाँ जी,
नहीं हो सकता है नरसिंह कवच तुम्हारे पास है, हो सकता है। ये सब प्रायः त्रिनयन त्रिपुरारी, नहीं त्रिनयन तो शंकर जी को कहते हैं जनरली
जी। हाँ जी,
वो तीसरी उनकी आंख खुलती है तो प्रलय होती है, पर नरसिंह देव को यहाँ त्रिनयन कहा है। वैसे त्रिनयन का अर्थ शब्द अर्थ में और भावार्थ में है तीनों लोकों का नियंत्रण करने वाले।
जी जी, यस
सबड्यूअर ऑफ द थ्री वर्ड्स। ओके जी, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरि बोल।
हरे कृष्णा,
थैंक यू, हरि बोल।
Yeah.